ओम शांति।
इस संगम युग पर हम सभी का मिलन शिव बाबा से हुआ है और उसने हम सभी को निरंतर मिलन करने का मार्ग दिखा दिया है। हमारा योग अभ्यास हमें रोज मिलन का अनुभव कराए। केवल ये अभ्यास न रह जाए, हम केवल योग लगाने वाले न रहें, बल्कि योग करते ही ऐसा लगे कि हम शिव बाबा से मिल लिए। वैसा ही सुख जैसा व्यक्त बाबा से मिलकर प्राप्त किया, हमें योग के द्वारा प्राप्त होना चाहिए। सभी जानते हैं योग के द्वारा ही हम अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करते हैं, और हमारी संपूर्ण स्थिति कोई साधारण स्थिति नहीं, वो बाप समान स्थिति है, जिसमें हमारे पास वो सब पावर गुण पवित्रता अथॉरिटी अधिकार आ जाते हैं जो भगवान के पास हैं। योग अभ्यास के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने योग के महत्व को समझते चलें। हमारा एक एक सेकंड का योग क्या क्या बड़े कार्य करता है, अगर इसकी महसूसता हमें निरंतर रहे तो हम योग के विषय में अलबेले नहीं बन सकेंगे। निरंतर अगर हम योग अभ्यास पर ध्यान दें तो हमें पता चलेगा हमारा एक एक क्षण का योग इस संसार के वायुमंडल को बदलता है। हमारा एक एक सेकंड का योग प्रकृति पर प्रभाव डालता है, इस संसार की अनेक आत्माओं को प्रेरणाएं देता है। जिनका योग बहुत अच्छा हो जाता है, जो योग की शक्तिशाली स्थिति में रहने लगते हैं, उनका योग न केवल उनके लिए होता है, न केवल उनके विकर्म विनाश करता है, बल्कि संसार की अनेक आत्माओं के दुख हर लेता है। इस संसार में अनेक मनुष्यों को तनाव से मुक्त कर देता है, कमजोर आत्माओं को बल दे देता है, दुखियों को सुख देता है, उनके दुख हर लेता है। तो हमारा योग केवल हमारे लिए नहीं, विश्व कल्याण के लिए है। इतना ही नहीं, हम सब जब अच्छा योग करते हैं तो हमारा योग अभ्यास ग्रहों को, तारों को, स्पेस में जो कुछ है सबको प्रभावित करता है, उनकी गति को बदल सकता है, उनको पावन कर सकता है, धरती के अंदर की स्थितियों को बदलता है, उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन कर सकता है। तो योग एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसमें हम भगवान के साथ रहते हैं। योग को हम अपने लिए इस रूप में समझ लें कि योग का अर्थ है भगवान के साथ रहना। तो आज हम इस भट्टी को चार स्वरूपों में बांट रहे हैं। एक पहला अनुभव हम सभी करेंगे आज प्रेम स्वरूप स्थिति का, जिससे हमें ये सीखना है कि हम बाबा के प्यार में मगन कैसे रहें। दूसरा शांत स्वरूप स्थिति, तीसरा पवित्र, और चौथा शक्ति स्वरूप। ये चारों योग के विभिन्न अनुभव हैं। योग जैसे जैसे हमारा अच्छा होता जाता है, हमारे संस्कार बदलते हैं, और ये चारों बातें विशेष रूप से हमारे जीवन में प्रत्यक्ष दिखाई देने लगती हैं। प्रेम, शांति, पवित्रता और शक्तियां, इन चारों के आने से सभी विकार नष्ट हो जाते हैं और आत्मा गुण कलाओं और शक्तियों से संपन्न हो जाती है। तो इन चारों के मूल में बीज, चारों का आधार, एक छोटे से शब्द को हम बनाएंगे जो बहुत सरल शब्द है, सभी ने अनेक बार सुना है, परंतु आज उसके गहन चिंतन में और अनुभव में चलना है, वो है मेरा बाबा। बिल्कुल सरल शब्द, जिसमें न किसी भाषा की जटिलता है, न कुछ समझने में कठिनाई, परंतु हमें चिंतन करना है। अब अभी से हम सभी चलें इस नशे की ओर कि जिसे लोग भगवान कहते हैं, जिसकी ओर सारा संसार देखता है, जो सभी का प्रेरक है, गाइड है, वो परमपिता हमारा है, मेरा है। अपने से बात करेंगे सभी, याद दिलाएं कि हे आत्मा, जिसको तू आज तक याद करती आई, वो तेरा है। इस नशे में आ जाएं, तेरा है और तुम उसके हो। याद दिलाया करते हैं बाबा कि भक्ति में तो तुम इतना कहते थे कि हे भगवान, जब आप इस धरती पर आओ कभी तो हमें अपना बना लेना, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता था कि जब मैं आऊंगा तो तुम्हें तो अपना बना ही लूंगा, परंतु मैं भी तुम्हारा हो जाऊंगा। भगवान हमारा हो गया, उस पर हमारा अधिकार हो गया। न केवल वो हमारा है, लेकिन उसने कह दिया कि जो कुछ मेरा है अब वो तुम्हारा है। अपने से बात करें सभी, भगवान हमारे सामने खड़ा है और हमें दृष्टि देकर कह रहा है कि बच्चे, जो कुछ मेरा है वो अब मेरा ही नहीं, तुम्हारा भी है। मेरी सारी शक्तियां आज से तुम्हारी हैं, मेरी संपूर्ण शांति आज से मैं तुम्हें दे रहा हूं, सारे गुण तुम्हारे हैं, इन्हें स्वीकार करो। मेरे सारे वरदान अब तुम्हारे साथ रहेंगे, इन्हें काम में लाओ। मेरी सारी शक्तियां तुम्हारी हैं, यूज करो इन्हें जैसे मैं इन्हें यूज करता आया हूं तुम्हारे कल्याण के लिए। अब तुम इन्हें यूज करो अपने और जगत के कल्याण के लिए। ये बाबा हमें सामने खड़े होकर याद दिलाते हैं, इसलिए हमें उससे कुछ मांगने की जरूरत नहीं। बिना मांगे ही जब से हमने उसको अपना कहा, उसने अपना सब कुछ कहा, तुम्हारा है। बिना मांगे ही हमें संपूर्ण अधिकार दे दिया। हम इस अधिकार को महसूस कर लें। भट्टी में आज सभी बैठे हैं, स्वीकार कर लें भगवान हमारा है, उसका जो कुछ है वो हमारा है, तो बहुत बड़ी चीज हो गई। वो स्वयं हमारा, उसने बहुत अच्छे शब्द कहे, बच्चे मैं तुम्हारा हूं। साकार में हमने सुना, बाबा ने कहा, जरा अपने भाग्य को तो देखो, भगवान तुम्हारी मुट्ठी में है। चिंतन कर लें सभी, भगवान हमारे हाथ में, हमारा बनकर हमारे साथ, उस पर और उसकी सभी शक्तियों और खजानों पर हमारा अधिकार। क्या करना चाहिए? इस अधिकार की स्मृति हमें अधिकारों को अनुभव कराती है। कई सोचते हैं कि अधिकार तो है, परंतु प्राप्त कैसे करें? उसका तरीका है अधिकारों की स्मृति अधिकारों को प्राप्त कराती है। भगवान पर भी अधिकार, जैसे चाहें और जब चाहें उसको यूज करें, उससे मदद लें, उसको अपना साथी बना लें। हम सभी ने भक्ति में सुना है श्री कृष्ण को गोपियां किस तरह नचाती थी, किस तरह लगता था कि श्री कृष्ण उनके अधिकार में आ गया है, वो जो कह रही हैं वही वो करने के लिए बाध्य हो रहा है। ये था अधिकार, ये था प्यार। तो पहली चीज जो हमें योगयुक्त बना देती है वो है मेरा बाबा, जिसमें हमें योग अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ती। ये नशा और स्मृति हमारे जीवन को योगयुक्त बना देती है, निर्भय और निश्चिंत बना देती है। जब भगवान ही हमारा है तो चिंता और भय किसका। याद रखा जाए कि भगवान हमारा है।
एक छोटा सा अनुभव।
एक बच्चा अभी अभी आया, छोटा बच्चा, उसकी माँ ने कहा कि ये रात को बहुत डरता है, और उसकी बातों से लगा कि बच्चा क्यों डरता है। रात को उसको कुछ छाया दिखाई देती है, कोई विल सोल, कोई भूत प्रेत उस पर अपनी छाया डालता है, बच्चा डरता है, चिल्लाता है। क्या करें, बच्चे को योग सिखाया नहीं जा सकता था। हमने उसको इतना कहा, 7-8 साल का बच्चा था, डरता था बहुत, बुद्धि भी कमजोर हो गई थी डरते डरते, कि तुम केवल इतना याद करो सोते समय, और जब कभी ऐसा हो जाए कि शिव बाबा मेरे साथ है। और बच्चा था, उसने ग्रहण कर लिया, उसी दिन से शुरू किया, और 3 दिन में ही उसका डर खत्म हो गया, और 8 दिन में वो सारी समस्या खत्म हो गई। बाबा हमारे साथ है, ये संकल्प छोटा नहीं है, बहुत बड़ी बात बाबा ने हम सबको अधिकार रूप में, वरदान रूप में दे दी है। भक्ति में तो शास्त्रों के अनुसार कहते रहे भगवान सब जगह है, हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, परंतु हमारे साथ है ये किसी को अनुभव नहीं हुआ। हम पूछ लेते हैं लोगों से, जब कोई बहुत बहस करता है भगवान तो हमारे अंदर है, हम बहस न करके उससे पूछते हैं तुम्हारे अंदर है, उसका क्या अनुभव है तुम्हें, भगवान तुम्हारे पास है, क्या अनुभव है। जिसकी याद से ही मन शांत हो जाता हो, वो अगर तुम्हारे अंदर बैठा है तो अशांति क्यों है। लेकिन बाबा ने हमें प्रैक्टिकल में बता दिया कि जब जब तुम मुझे याद करोगे, मुझे अपने साथ पाओगे। हमें अपने चित्त में समा लेनी चाहिए ये बात, बहुत बड़ा अधिकार दे दिया है। भक्ति में इसी की कामना करते आते थे हम सब जन्म जन्म, बाबा ने हमें वरदान दे दिया, अधिकार दे दिया। सभी अपने चित्त में इस बात को समा लें, जीवन की भिन्न भिन्न परिस्थितियों में बाबा को जब जब याद करोगे उसे अपने साथ पाओगे। दिखाई न भी दे तो उसकी शक्तियां हमारे साथ रहकर हमारी परिस्थितियों को बदल जाएंगी। और योग में अच्छा अभ्यास करते करते सभी इस अनुभव की ओर चलें, बाबा को याद किया और बाबा नीचे ही उतर आया। ये बात आने वाले विनाश के काल में हम सभी के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगी। जब इस संसार में भय, असुरक्षा और चिंताओं का माहौल गर्म होगा, 3 चीजें होंगी आने वाले काल में, भय, चिंताएं और इनसिक्योरिटी, असुरक्षा। किसी को पता नहीं होगा कि अगले क्षण क्या हो जाएगा, कल क्या हो जाएगा, बाहर गए हैं वापिस आएंगे या नहीं। ऐसे में बाबा को याद किया और बाबा की उपस्थिति का अनुभव करने से जीवन भय, चिंता और असुरक्षा से मुक्त होकर निश्चिंत, बाबा की छत्र छाया में सुरक्षित और उसके साथ के कारण निर्भय हो जाएगा। तो सभी इस एक बात को अपने जीवन में समाकर, बाबा मेरा है, अपने चिंतन में रोज 1-2 बार इस बात को अवश्य लाना चाहिए, सवेरे रोज याद दिलाना चाहिए स्वयं को कि हे आत्मा, तुम इस संसार में अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ स्वयं भगवान है।
वो तुम्हारा है, उसकी सारी शक्तियां और सारे खजाने तुम्हारे हैं। भगवान हमें मिला है जन्म जन्म, हम उसे बहुत प्यार से याद करते आए। चलते चलते भक्ति में प्यार खत्म हो गया, केवल नाम रह गया। पंडितों ने भी सिखा दिया कि कलयुग में केवल नाम लेने से ही तर जाओगे। प्यार की बात बहुत पीछे चली गई। अब बाबा ने आकर हम सभी को सच्चा प्यार देकर ये अनुभव कराया कि मैं प्यार का सागर हूं। तो कैसा हूं? केवल गायन करने के लिए नहीं हूं, स्तुति और कीर्तन के लिए नहीं हूं कि हे भगवान तुम प्यार के भंडार हो, प्यार के सागर हो। मैं सचमुच प्यार का सागर हूं। बाप बनकर जब हमारे सामने आया तो हमने देख लिया कि प्यार के सागर का प्यार कैसा है। सभी ने देखा होगा अव्यक्त बाबा को इस बार, बहुतों ने हमें सुनाया, जो पहली बार आए थे उन्होंने सुनाया कि बाबा से बहुत बहुत प्यार का अनुभव हुआ है। हम सोच रहे थे कि बाबा किसी से भी पर्सनली नहीं मिला, लेकिन ये सागर की ही अपनी विशेषता है कि वो एक स्थान पर बैठे हुए 10,000 आत्माओं को एक साथ प्यार का अनुभव करा देता है। और उसकी पहली विधि मूल कारण है अपनापन। बाबा जब यहाँ बैठता है, सबको जब देखता है, तो सबसे पहले उसकी फीलिंग्स में, उसकी भावनाओं में ये है, ये मेरे बच्चे हैं, बहुत दुख पाया है इन्होंने, अब मैं इन्हें प्यार की दृष्टि से संपूर्ण सुख प्रदान करूं। हमारे अंदर भी बाबा के लिए जैसे जैसे अपनापन बढ़ता जाता है, प्यार की फीलिंग्स बढ़ती जाएगी। हम अपने अंदर बाबा के लिए प्यार पैदा करें। कैसे प्यार पैदा होता है? प्यार कोई स्थूल चीज तो नहीं है जिसको बढ़ा दिया जाए। प्यार का तो कुछ आधार होता है। संसार में भी हम देख लें, जहां प्यार है आपस में, उसके आधार क्या क्या हैं? बाबा ने हम सभी को जितना सुख दिया है, जितना सहयोग दिया है, उतना संसार में और कोई नहीं दे सकता। हम अपने से पूछा करते हैं, आप भी सब पूछ लें, कि हमारे इस जीवन के मार्ग पर अगर भगवान हमारा साथी न बनता तो हम कहां होते? सभी बात करें अपने से, जीवन की राहों पर अगर भगवान का साथ न मिलता तो हम कहां होते? कितना बचाया है उसने हमें, कितनी सुंदर गाइडेंस दी है जीवन में, लाइट दी। अंधकार से भरा हुआ था जीवन, पता ही नहीं था कुछ भी, कहां जाना है, सत्य क्या है, कितनी भटकन थी सभी के पास, और विकारों ने हर मनुष्य को कितना पीड़ित किया था, कितना पीड़ित किया। आज भी हम देखते हैं इन सभी विकारों के कारण मनुष्य कितना पीड़ित है इस संसार में, और बाबा आकर हमारी पीड़ा हर रहा है। तो उससे ज्यादा प्यारा हमारे लिए और कौन हो सकता है? संसार में भी कोई हमें सुख देता हो, कोई हमें समय पर मदद करता हो, वो हमें कितना अच्छा लगता है, हम उसका एहसान मानते हैं। भगवान ने बाप बनकर, हमारा बनकर हमारे लिए क्या क्या किया है। तो हम सभी बाबा से रूढ़ियान करें कि अगर तुम्हारा और हमारा मिलन न होता तो आज हम कहां होते? यदि तुम हमें न मिलते तो हमारी क्या स्थिति होती? तुम इस जीवन में आए हो तो जीवन कमल खिल उठा है, एक सहारा मिल गया, बहुत बड़ा सहारा, जिससे बड़ा सहारा और कोई नहीं होता। सच्चा मार्ग मिल गया, भविष्य के बारे में कुछ भी अनिश्चित अंधता नहीं रही, कोई अंधकार नहीं रहा। ऐसी रूढ़िहान से अपने चित्त को प्यार से भरपूर करें। प्यार को बढ़ाने का पहला आधार है रूढ़िहान, और रूढ़िहान का आधार है बाबा से कोई भी संबंध बहुत समीपता का जोड़ना। रूढ़िहान बिना संबंध के नहीं हुआ करती। हम किसी से ऐसे ही बात करें तो दो चार मिनट ऑफिशियल बात होगी, और कोई हमारा अपना हो तो उससे हम खुले दिल से घंटों बात करते रहते हैं, और वो बात बड़ी आनंदकारी होती है। तो हम बाबा से कोई संबंध जोड़ लें जो आपको प्रिय लगता हो। बाप, टीचर, सदगुरु, तीन संबंध तो उससे हमारे ऑफिशियल हैं, और कम से कम एक संबंध और, कम से कम एक जोड़ने तो सारे चाहिए, पर आज हम आपका ध्यान केवल एक संबंध और की ओर दिला रहे हैं, जिसमें आप संपूर्ण सुख प्राप्त करें, उसे अपना बच्चा बना लें, मित्र बना लें, प्रियतम बना लें, माँ बना लें, जिसमें आपको बहुत सुख मिलता हो, उसी के आधार से उसके प्यार का अनुभव करें। तो जितना जितना उससे हमारा प्यार बढ़ता जाएगा, उतना ही उतना आत्माओं से भी हमारा प्यार बढ़ता जाएगा। प्रेम में मगन होने के लिए ये आवश्यक है कि किसी दूसरे का प्यार, स्वार्थ का प्यार, विकारों का प्यार, वैभवों का प्यार हमें अपनी ओर न खींचता हो। उसके प्यार में मगन होने के लिए ये भी आवश्यक है कि किसी की घृणा और ईर्ष्या, हमारे मन में उठी हुई किसी के लिए घृणा और ईर्ष्या हमारे प्यार को खींच न रही हो। अगर हमारे मन में संसार की एक आत्मा के लिए भी घृणा रह जाती है तो हमारा बुद्धि योग अवश्य टूटता रहेगा। हमें नोट कर लेनी है अपने पास ये बात, एक के लिए भी अगर घृणा है सारे संसार में से केवल एक, तो वो घृणा भी हमें नीचे खींच कर लाएगी। इसलिए भट्टी में सभी अपने को चेक करके देख लें किस किस के लिए हमारे मन में घृणा भाव है, उस घृणा भाव को शुभ भावनाओं में बदलकर समाप्त कर दें। इस भट्टी की सार्थकता हो जाएगी, ये सफल मानी जाएगी ये भट्टी, अगर आप आत्माओं के लिए अपने मन में छुपी हुई घृणा को समाप्त कर दें। तो तैयार हैं आप इसके लिए? बोलो, घृणा साथ तो लेकर जानी नहीं है, अगर साथ लेकर जाना चाहेंगे तो बाबा चला जाएगा और हमें नीचे छोड़ जाएगा कि पहले घृणा का हिसाब किताब पूरा करके आओ, फिर आना मेरे साथ। और हमारी घृणा हमें ही कष्ट देती रहेगी। घृणा तो घुण की तरह है, घुण गेहूं को लग जाता है, सबको पता है, खा जाता है सारा गेहूं। चले, अभी योग का गीत बज गया है, तीन मिनट के लिए प्यार से रूढ़िहान। दूसरा स्वरूप शांति। जो बाबा के नए बच्चे हैं वो भी इस चीज को सीख लें, और पुराने भी, कि जो योग की विधि पहले दिन सिखाई जाती है, पहले लेसन में, उससे आगे बढ़ना होता है। और योग में रस तभी आता है जब योग को भिन्न भिन्न तरीकों से अभ्यास में लाया जाता है। तो रोज ये बैठ के सोचना कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, ये योग नहीं होता। इसका अर्थ है कि हमें बाबा याद दिलाता है कि हे आत्मा, तुम शांत स्वरूप हो, इसलिए तुम्हें अशांत नहीं होना चाहिए। तुम प्रेम स्वरूप हो, इसलिए तुम्हें क्रोध स्वरूप, घृणा स्वरूप नहीं होना चाहिए। और आगे हम चलते हैं तो बाबा हमें याद दिला देता है कि मैंने अपनी संपूर्ण शांति तुम्हें दे दी है, अब तुम शांति के भंडार हो, सारे संसार की आत्माओं को शांति दो। जो बहुत अच्छा योग करना चाहते हैं, उन्हें एक शब्द याद रखना है योग के लिए, दाता स्वरूप, बाबा से लेना और सारे संसार को देना। सरल शब्दों में कि मैं आत्मा बाबा से जुड़ी हूं और मुझसे जुड़ा है सारा संसार, प्रकृति और करोड़ों आत्माएं। मैं शांति के सागर से जुड़ी हूं और मुझसे जुड़ी हैं अनेक अशांत आत्माएं। शांति के सागर की शांति की किरणें मुझ आत्मा को प्राप्त होती हैं और मुझसे चारों ओर फैलती हैं, अशांत आत्माओं को शांति प्रदान करती हैं। आप इस तरह जब योग करेंगे तो योग बहुत पावरफुल होगा, ये विश्व को शांति का दान देने वाला योग है और इसको ही बीज रूप भी कहा जा सकता है, क्योंकि बीज रूप स्थिति का अर्थ है एक संकल्प में स्थित होना, मन के सभी संकल्पों को समेट कर मन को शांत करके बाबा के साथ स्थित हो जाना। चाहे हम परम धाम में स्थित हों उसके साथ, चाहे हम यहाँ हैं और वो वहां है, लेकिन हम उसके स्वरूप पर स्थित हैं, ये सब योग की बहुत शक्तिशाली स्थिति कहलाती है। तो इस तरह हमें अपनी शांति को बढ़ाते चलना है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, यहां से आगे निकलकर मैं आत्मा शांति का भंडार हूं, मुझे इस सारे संसार को शांति देनी है, लेना है और देना है। इसलिए मेरा मन कभी भी अशांत नहीं हो सकता। चिंतन करना है इसके साथ कि मैं आत्मा इस संसार में अवतरित हुई हूं, इस संसार में शांति की स्थापना के लिए, इसलिए इस संसार की कोई अशांति मुझे अशांत नहीं कर सकती। चाहे मैं कितनी भी अशांति के बीच क्यों न रहूं, एक बहुत अशांत वातावरण में हमें भेज दिया जाए, शिकायत कर देते हैं हम कि वातावरण बहुत अशांत था, क्या करें। हमें सोचना चाहिए कि वातावरण अशांत था और हमें वहां भेजा गया था उस वातावरण को शांत करने के लिए। हम अपने कर्तव्य को न भूलें तो किसी की भी अशांति हमारी शांति को भंग नहीं कर पाएगी। आपके घरों में भी अगर कोई एक व्यक्ति अशांति पैदा करता है तो ये सोचने की बजाय कि ये व्यक्ति हमारे सारे घर की शांति को भंग करता है, हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अपनी शांति के वाइब्रेशंस फैलाकर इसकी अशांति को भंग कर देना है। हमें ऐसे वाइब्रेशंस क्रिएट कर देने अपने घर में कि वो चाहते हुए भी अशांत न हो पाए, ये भी संभव है, क्योंकि एक योगी आत्मा वातावरण को चार्ज कर सकती है, वातावरण क्रिएट कर सकती है, कहीं भी अच्छे वातावरण का निर्माण कर सकती है। तो योग के द्वारा अपनी शांति के अनुभव में बैठें, तो यही अभ्यास सब करें कि बाबा से शांति की किरणें मुझे प्राप्त हो रही हैं। उसको रंग दे सकते हैं आप, बहुत आनंद होता है उसमें, हरे रंग की शांति की किरणें मुझे प्राप्त हो रही हैं, चारों ओर फैल रही हैं। साथ में अपनी चेकिंग कर लें कि जीवन में कौन सी बात मुझे अशांत करती है। भट्टियों का अर्थ केवल योग लगाना नहीं होता, परंतु भट्टी का एक अर्थ है आत्मनिरीक्षण, भक्ति में जिसे स्वाध्याय कहते हैं, सेल्फ एनालिसिस। चेक कर लें कौन सी बात मेरी शांति को भंग करती है, कौन सी ऐसी परिस्थिति है जीवन में जो मुझे संपूर्ण शांति के रस में रहने नहीं देती, उसको हटाना है। कि दूसरों की अशांति शक्तिशाली है या मेरी शांति कौन शक्तिशाली है? हमारी शांति, शांति की ही शक्ति है। अशांति में वास्तव में कोई शक्ति नहीं है, परंतु क्योंकि हमारी शांति की शक्ति कमजोर पड़ गई है इसलिए हमें अशांति शक्ति नजर आती है। तीसरा स्वरूप पवित्रता का स्वरूप। इसको आगे बढ़ाने से पहले अब हम 5 मिनट के लिए इस अनुभव में बैठेंगे, ट्यून बजाएंगे, लाइट वाले हैं नहीं तो सफेद में ही चलने दें, सभी स्थित हो जाएं। 1 सेकंड में मैं आत्मा शांति की भंडार, मुझसे चारों ओर शांति की तेजस्वी किरणें सारे संसार में फैल रही हैं, बाबा से मुझे आ रही हैं, ले रहे हैं और दे रहे हैं 5 मिनट के लिए ये अनुभव। पवित्रता का बाबा के बनते ही हम सभी को पवित्रता का वरदान मिल गया है। बाबा की पवित्र किरणें हम सभी के जन्म जन्म के विकारों को नष्ट कर रही हैं। पवित्र किरणें हमेशा ही सफेद रंग के रूप में नीचे उतरती हैं। सफेद रंग पवित्रता का ही सूचक है। हमारी पवित्रता इस संसार के लिए वरदान है। जब हम योग में बैठें, तो हम ऐसा अभ्यास करेंगे, पहला स्वमान स्वयं को देंगे कि इस शरीर में मैं परम पवित्र आत्मा हूं। जब हम इस संकल्प में स्थित होते हैं तो हमसे पवित्रता के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलने लगते हैं। सबसे पहले वो हमारे शरीर में फैलकर शरीर के अंदर से माया के जीवाणुओं को नष्ट करते हैं और फिर चारों ओर फैलते हैं। इस योग अभ्यास में हम भिन्न भिन्न तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कभी ऐसे कि परम धाम में मैं आत्मा पवित्रता के सागर के पवित्रता की किरणों के नीचे बैठी हूं, उससे मेरे ऊपर निरंतर पवित्रता की किरणों का प्रवाह आ रहा है। एकाग्र कर दें हम स्वयं को कुछ समय के लिए, या मैं इस शरीर में परम पवित्र आत्मा हूं और पवित्रता के सागर से मुझे पवित्रता की किरणें मिल रही हैं। पहले भी हमने बताई ये बात